नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, राज्य सरकार वनाग्नि की रोकथाम के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है और देहरादून जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाली जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलीकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जनसमस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जनता की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिए। उधम सिंह नगर जिले के नगर निगम रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं से हुए संवाद में उनके भविष्य, शहर की व्यवस्थाओं और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों से भी खुलकर अपने सुझाव रखने को कहा। इस अवसर पर महापौर ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को निगम की तरफ से छात्रवृत्ति देने और शैक्षिक भ्रमण पर भेजने की बात भी कही।
हमने शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हाईस्कूल इंटर में अच्छे नंबर लाए हैं, उनको आज नगर निगम में सम्मानित किया है और उनके साथ संवाद भी हमने स्थापित किया और उस संवाद में बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा निकल कर आई थी। बहुत सारे बच्चों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की स्वच्छता को लेकर अपना विजन दिया और कुछ बच्चों ने हमसे मांग भी की है कि कैरियर काउंसलिंग या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नगर निगम से मिलनी चाहिए, तो जिस पर हमने तय किया है कि नगर निगम अभी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगा जो शहर के अच्छे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और इसके साथ ही हम उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी, अपने जो टॉपर बच्चे हैं उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी किसी न किसी स्थान पर निशुल्क लेके जाएंगे ताकि वहां से कुछ चीजों को सीखें।
वहीं छात्रा कशि सिंह ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की।
आज हम नगर निगम के इस प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे हम उत्तीर्ण करे हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छी पहल है ये बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रखने का मौका मिला था, सुझाव हमने रखे थे गवर्नमेंट के लिए अपने, तो अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है एंड उस लेवल के लोगों को इनिशिएटिव्स देने का सजेशन मिल पा रहा है, एंड दिस इज अ ग्रेट वे कि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करके अपने ओपिनियंस वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जस्ट एज स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हमने ही इन चीजों में आगे बढ़ना है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार वनाग्नि रोकने के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है। इसके तहत नियमित कार्यबल बढ़ाने के साथ ही व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी के लगातार बढ़ते तापमान, लंबे समय पर सूखा, अनियमित मानसून, अल नीनो समेत अन्य कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आग की घटनाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। वन मंत्री ने कहा कि वनाग्नि नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान, प्रचार प्रसार और नवाचारों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
वनाग्नि पे अंकुश लगाना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी के रूप में, और इसपे हमारा विभाग अपने रेगुलर वनकर्मियों के साथ साथ 5,500 के आसपास फायर वॉचर्स के माध्यम से इस वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इसमें हमने 4-5 वर्षों में लगातार नवाचार किए, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी समिति बनी, जिससे डिजास्टर रिलीफ फंड से भी हम लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जन सहभागिता पे हमने फोकस किया, और जो सबसे संवेदनशील हमारे 450 के आसपास जो हमारे क्षेत्र थे उनमें जिलाधिकारी उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर उनको 30,000 रुपए का इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया।
देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल के तहत जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इसका लाभ समाज कल्याण विभाग में पेंशन और अस्पताल में इलाज करवाने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिल रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिंडियाल ने बताया कि देहरादून एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ निःशुल्क ई वाहन व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि उम्र दराज लोगों और दिव्यांगजनों को अक्सर इलाज, फिजियोथेरेपी और पेंशन प्रमाण पत्र से जुड़े कागजी कामों के लिए समाज कल्याण विभाग और अन्य अस्पतालों के चक्कर काटने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग को चालक सहित इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।
अभी सैटरडे को यानी 23 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग को एक चार्जेबल फोर व्हीलर दिया है विद ड्राइवर, और इसका मेन कारण ये कि समाज कल्याण ऑफिस में जितने भी वृद्ध और दिव्यांग जन आते हैं अपने पेंशन के काम से, हैंडीकेप लोग आते हैं पेंशन के काम से, तो उनको वापस उनके घर तक छोड़ना है, ये सुविधा सब निःशुल्क है। एम कोई दिव्यांग जैसे मार्केट में है, उनको DDRC जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।
TSDC इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया है। इस अभियान में निगम की सभी कार्यालयों, परियोजना स्थलों और इकाइयों में स्वच्छता और सतत विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में कॉरपोरेट कार्यालय ऋषिकेश में कार्यपालक निदेशक नीरज वर्मा ने कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं ऋषिकेश के जानकी सेतु और त्रिवेणी घाट सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर स्वच्छ भारत, हरित भारत, स्वस्थ भारत का संदेश दिया गया। अभियान के तहत टिहरी, झांसी, खुर्जा और अरुणाचल प्रदेश समेत विभिन्न परियोजना स्थलों पर स्वच्छता अभियान, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं, जन जागरूक रैलियां, कार्यशाला और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए। छात्राओं, महिलाओं और स्थानीय लोगों को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। TSDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सिपंग कुमार गर्ग ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा अभियान 31 मई तक चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण, जन जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा राज्य सरकार वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है, और देहरादून जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।